हरे कृष्णा। एक दिन थोड़े बड़े हुए हमारे गौरंग महाप्रभु निमाई, खेलने वाले भागने वाले बच्चे बन गए। उनके घर में एक ब्राह्मण आया और वो ब्राह्मण जो था वो ऐसे भटकंती करने वाला, यात्रा करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला था। तो जैसे ही वो जगन्नाथ मिश्रा के घर पे आया, उन्होंने तुरंत उसके लिए रसोई का सामान दे दिया, रसोई सेटिंग करके दिया। क्योंकि उन जमाने में ब्राह्मण लोग जब आते थे किसी के घर में तो अपने हाथ से ही खाना बनाते थे, किसी के घर हाथ का खाते नहीं थे। तो गृहस्थों की सेवा क्या थी? उसको अपने हाथ से खाना बनाने के लिए हेल्प करना, यह उनका सेवा था। तो जगन्नाथ मिश्रा ने उसको अपना व्यवस्था करके दिया और उसने भोजन लगाया, बनाया अच्छी तरह से, चावल बनाया, सब्जी बनाई। और गोपाल जी का उनका विग्रह था, उसको बहुत मंत्र बोल के भोग लगाया। और जैसे वो आंख बंद करके नमो ब्रह्मण देवाय ब्रह्मण हिताय चा भोग लगा रहा था, अचानक वहां से निमाई आ गए और उनके आंखों के सामने ऐसे हाथ डाल के उन्होंने उस चावल को खाना आरंभ किया। कुछ चावल गिर रहा है मुंह से, कुछ हाथ में है, कुछ मुंह में है। तो जब थोड़ा सा बालक को जरा बाहर से तो ब्राह्मण हाय 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 कहने लगा कि मेरा जो भोग है उस बालक ने भ्रष्ट कर दिया है। तो सब लोग भाग के आते वहां पर, जगन्नाथ मिश्रा, सची माता, अरे हमारे बालक ने ऐसे गुस्ताखी की, उतना उद्दंड बालक ने ऐसा काम किया आपका, ब्राह्मण जी हमको माफ कर देना, हम माफी चाहते, हमारा बालक हमारे नियंत्रण के बाहर चला गया, कृपा करके माफ करके दोबारा रसोई बनाना। ब्राह्मण जी कहते नहीं, शायद भगवान की ऐसी इच्छा कि आज मैं फल ही खा लूं, कोई पकवान नहीं खाऊं। लेकिन मिश्रा जी कहते हैं नहीं नहीं, हमारे बालक की गलती है, उनकी गलती से आपको भूखा रहना पड़ेगा, व्रत का खाना खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप कृपा करके एक बार साफ करके दोबारा बनाइए। बहुत विनती करते तो मान जाते बेचारे। इस बार कहते दिमाग को जो है ना पकड़ के रखो अच्छी तरह से, सब सखियों को बोलते अपने पड़ोसी में लेके जाओ उसको, जब तक इसका भोग नहीं बनता है, भोग लगता नहीं, अपने हाथ में उसको पकड़ के रखो, छोड़ो नहीं उसको, अपने आप में बिजी रखो उसको। लेकिन हमारे निमाई जो है वो सब सखियों का इतना मीठी मीठी बातें करते हैं, कब मीठी मीठी बातें करके वहां से खिसक जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। वो हंसती रहती है अपने अपने अंदर, उसके नीचे से वो बालक भाग के जाता है। जब दोबारा भोजन बना के, चावल बना के, जब मंत्र बोल रहे नमो ब्रह्मण्य देवाय वो ब्रह्मण्य हिताय च, तभी दोबारा बालक वहां प्रकट हो जाता है। तो आंख बंद करके घंटी बजा रहे हैं, अच्छी तरह से हाथ मार मार के चावल खा रहे हैं, कुछ मुंह में है, कुछ हाथ से गिर रहा है। फिर जब भी सोचते हैं कि हमारा भोग लगा के हो गया, आंखें खुलते हैं तो बोलते हाय 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 हाय, फिर बालक ने आकर मेरा भोग भ्रष्ट कर दिया। इस बार जगन्नाथ मिश्रा डंडा लेकर भागते हैं उनके पीछे, दंड बालक, तुमने हमारे मेहमान का अपराध कर दिया है, उसको दंड देना चाहिए। तो ब्राह्मण कहते नहीं नहीं, ये बालक है, फिर क्या दंड देना है उसको, भगवान की इच्छा है, मैं कुछ खाऊ ही नहीं, चलो अभी बहुत देर हो चुकी है, 12 बच्चों के रात के, अभी मैं क्या भोग बनाऊंगा। तो उतने में विश्वरूप जो है चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, जगन्नाथ मिश्रा के बड़े पुत्र, बड़े सुंदर और बड़े सुशील और बड़े सद्गुणों से भरे हुए, बड़ी कोमलता से हाथ जोड़कर, बड़ी नम्रता से, मधुर भाषा में, सम्मोहिनी जैसे शब्दों में उनको विनती करते हैं, महाराज जी कृपया आप एक बार और भोजन बनाइए, इतनी देर नहीं हुई है, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। उसका तरीका, उसका दर्शन, उसका बोलने का जो सद्भावना उसके देखकर ब्राह्मण पूछते किसका बालक है ये, तो भूल गया ब्राह्मण सब कि मेरा दो बार भोग भ्रष्ट हो चुका और वो क्या भगवान की इच्छा है, उसकी सब जो चिंता थी वो नष्ट हो गई। तो कहते हैं कि जगन्नाथ मिश्रा का बड़ा लड़का है, केवल उसके कहने से मान जाते हैं और बीच रात में तीसरी बार भोग लगाना आरंभ करते हैं। उस समय सब सखियां उनको ले जाती है और सुला देती है, दरवाजों को कड़ी लगाते, लॉक कर देते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा ताला है जो भगवान को रोक सकता है? भगवान बालक बनकर गोद में सो रहे हैं, पड़ोसी के घर में सो रहे हैं, उसमें ताला लगा हुआ है, इसमें भी ताला लगा हुआ है कि भाई दोनों तरफ से प्रवेश न कर पाए। और अभी कहते हैं कि अभी चिंता का बात नहीं, वो सो गया, अभी सब लोग सो गए, बीच रात अभी कहां उठेगा वो, उसका भोजन भी हो गया है। और बीच रात में घंटी बज रही है, नमो ब्रह्मण्य देवाय वो ब्रह्मण्य हिताय च, और सब दरवाजे और सब ताले वैसे के वैसे रखते हुए बालक वहां प्रकट हो जाता है। और कहते निद्रा देवी उस समय सबके जीवन में इस तरह प्रवेश कर गई कि ना घंटी सुनाई दी ना और कुछ सुनाई पड़ा। जोर से बालक, जब बालक ने हाथ डाला तो ब्राह्मण ने फिर से हाय हाय करके पुकारा। इस बार हाय हाय सुन के कोई नहीं भाग के आया, क्योंकि सब लोग स्वयं भी सो रहे थे निद्रा देवी के प्रभाव से। तब बालक ने कहा क्यों पुकार रहे हो जोर जोर से, हाय हाय करके रो रहे हो, बार बार पुकारते हो, पर मैं आता हूँ तुम्हारे पुकार सुनकर तुम्हारा भोग लेने के लिए, तो तुम रोते रहते हो, ये कैसी लीला है तुम्हारी? तुम पुकारते हो, मैं वही गोपाल हूँ जिसको तुम पुकारते हो, इतने प्रेम से पुकारते हो, इतने प्रेम से घंटी बजाते हो, इतने प्रेम से मंत्र बोलते हो, इतना प्रेम से भोग बनाते हो, तुम्हारे प्रेम की वजह से बार बार मैं आई एम गेटिंग पुल्ड, मैं खींच खींच के यहाँ पर आ रहा हूँ, और आने के बाद तुम चिल्ला रहे हो। तो उनकी आंखों के सामने वो बालक जो है, जो निमाई बालक है, वो गोपाल बन जाते हैं, सामने रंग के वृंदावन के किशोर बन जाते हैं, उनके पीछे गायें उत्पन्न होती हैं, सारा जमुना नदी, सारे पेड़ कल्पवृक्ष से तैयार हो जाते हैं, गाय बंदर पंछी सब, पूरा वृंदावन का दृश्य है सब प्रकट हो जाता है उसके आंखों के सामने, अनंत मात्रा में वृंदावन के दृश्य जो है उसके नजरों के सामने प्रकट हो जाते हैं, और वो आनंद से बेहोश होता है, बार बार बेहोश होकर गिर जाता है, उसके आंखों से अश्रु आते हैं, उसका कंठ गदगद हो जाता है, और वो गोपाल गोपाल बोलो, हे गोपाल हे गोपाल, ऐसे पुकारता है वो। लेकिन उतनी बड़ी पुकार सुनकर निद्रा देवी उस घर से चली जाती, और वो गोपाल की पुकार सुनकर वो गिर रहा है गोपाल को पुकारते हुए, वो चावल का भोग लगा है, उसके अंदर लोटपोट हो रहा है, उसके पीठ पर शरीर पर पांव पर हाथ पर सब जगह चावल और भोग लगा हुआ है, और पागलों की तरह वो गोल 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 जमीन पर घूम रहा है और गोपाल गोपाल चिल्ला रहा है बेहोश होकर। तो जगन्नाथ मिश्रा आते हैं, बोलते क्या हुआ महाराज जी, ऐसे क्यों डोल रहे हैं आप? बालक ने कुछ कष्ट नहीं दिया आपको? उसके पहले, इनके आने के पहले घटना होती है, पूरे वृंदावन का गोपाल के साथ में दर्शन देते हैं चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, और कहते हैं कि मैं वही बालक हूँ, वही गोपाल हूँ जो जन्म जन्मांतर तक आपके हाथ से भोग स्वीकार करता हूँ। आज मैं यहाँ पर निमाई के रूप में आया हूँ जगन्नाथ मिश्रा के घर पे। पहले जन्म में मैं नंदलाल बन के नंद भवन में आया था, गोकुल में आया था, उस गोकुल में आप आए थे वहां पर, और तब भी मैंने आपके हाथ से भोग स्वीकार किया था। जन्म जन्मांतर से मैं आपकी सेवा लेते आ रहा हूँ, आप वही ब्राह्मण हो, मैं वही कृष्ण हूँ, लेकिन इस जन्म में गौर वर धारण करके मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रेम भक्ति वाला प्रचार करने के लिए मैं आया हूँ। घर घर में, देश देश में, गांव गांव में मैं ये हरिनाम का प्रचार करूंगा और सब लोगों को प्रेम से पागल कर दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन मैं वो कृष्ण हूँ, मैं वो गोपाल हूँ, ये रहस्य आपको किसी को बताना नहीं है। तब वो गोपाल गोपाल करके चिल्लाकर लोटपोट होता है, उसकी आवाज सुनकर भाग भाग के आते हैं। ब्राह्मण के मन में इतनी तड़प है कि मैं सबको बता दूं कि तुम्हारे घर में कौन है, तुम्हारे घर में ये बालक कौन है, इसका महिमा जानो, इसके लिए उसका उसको आतुर हो रहा है। लेकिन उन्होंने वादा किया ना भगवान से कि मैं नहीं बोलूंगा, इसलिए वो पूरी तरह से उसी गांव में भ्रमण करने वाला ब्राह्मण जो है उसी गांव में सेटल हो जाता है, और दिन रात जीवन भर उस बालक की जो लीलाएं हैं जब तक महाप्रभु जी वहां पर रहे 24 साल तक, उसको अवलोकन करते रहता है। इस तरह से अद्भुत लीलाएं चैतन्य महाप्रभु ने की है। एक बार बालक अवस्था में वो नदी किनारे खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ में, तो बहुत सारे कुत्ते के पिल्ले वहां पर खेल रहे थे, तो वो सब बालकों को बड़े अच्छे लगे, वो कुत्ते के पिल्ले, उन्होंने अपने आप में उसको बांट लिए कि तू ये लो मैं ये लेता हूं। तो एक सबसे बड़ा सुंदर कुत्ते का पिल्ला था ना, वो गौरांग महाप्रभु ने ले लिया, गौरांग गौर हरि ने ले लिया। तो कुछ बालक उन पर चिढ़ गए, ने कहा तुमने सबसे अच्छा पिल्ला ले लिया हमसे, हमको चाहिए था। बोला कोई बात नहीं, हम सब लोग मिलकर खेलेंगे, उसमें क्या है। तो उस पिल्ले को प्रेम करते करते अपने घर लेके जाते, तो जो बालक नाराज हो गए थे वो जाकर सची माता को बताते हैं, जो नदी पर कपड़ा धो रही थी, पता है निमाई जो है ना कुत्ते के साथ खेल रहा है, ब्राह्मण कुल के लोग हो आप, इतना अभद्र है ये सब। अच्छा, सती माता भगवा के घर पे आती है, कहते निमाई कैसे अभद्र बालक हो, ब्राह्मण के पुत्र हो, हमारे घर में पूजा होती है ठाकुर जी की, ठाकुर जी की सेवा होती है, ठाकुर जी को भोग बनता है, भोग लगता है, इतने पवित्र कार्य होते हैं, इसमें कुत्ते का होना अच्छा नहीं है। बोला नहीं नहीं ये कुत्ता बहुत सुंदर है, मुझे चाहिए, मुझे इसमें प्रेम हो गया है, मैं नहीं छोड़ सकता इसको। तो कहते हैं तुम देखो बहुत गंदे हो गए खेल के, अभी आप नदी में स्नान करने जाओ और मैं तब तक कुत्ते के पिल्लों के यहां बांध के रखती हूं और उसको कपड़े देते हैं स्नान करने के और नदी किनारे बैठ देते हैं। और जैसे ही वो नदी किनारे स्नान करने को जाते हैं उसकी माता कुत्ते के पिल्ले को छोड़ देती है। और गुरुदेव बताते हैं कि वो जैसे कोई माता अपने बच्चे के विरह से व्याकुल हो जाती है, वैसे कुत्ते का पिल्ला अकेला था, उसकी माता उसके साथ में नहीं थी, तो उसके अपने माता को मिलने के लिए सच्ची माता ने उस पिल्ले को छोड़ दिया। तो किस दोस्त ने जाके भाग भाग के बताया, हे निमाई पता है तुम्हारी माता ने तुम्हारे प्रिय कुत्ते के पिल्ले को छोड़ दिया। तो वो चला गया घर छोड़ के, तो भाग के निमाई आगे स्नान करके रोते रोते, कहां है मेरा कुत्ते का पिल्ला, अभी चाहिए मुझे, नहीं नहीं पता नहीं कहां गया, अभी इधर था, पता नहीं मैं तो रखा था उसको अच्छी तरह से, तो चला गया वो, तो कोई बात नहीं मैं अभी ढूंढ के लाती हूँ, तुम तो मिठाई खा लेना, उसको मुंह में मिठाई का लड्डू डाल देते हैं। तो बालक भूल जाता है, सो जाता है। दो दिन के बाद में खबर आती है कि वो कुत्ते का पिल्ला जिसको चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, गौर हरि का हस्त स्पर्श हुआ था, वो प्रेम से पागल होकर पूरे नवद्वीप के शहर में, पूरे गांव में दो पैर जमीन पर, दो पैर दो हाथ ऊपर ऐसे करके दो पैरों पे चल रहा है कुत्ते का पिल्ला और मुख से बोल रहा है राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, हरे कृष्णा, ऐसे करके वो पुकार रहा है भगवान को दो हाथ से ऊपर उठाकर। उसकी ये अद्भुत लीला देखकर सब गांव के लोग उसके पीछे पीछे आने लगे, क्या लीला चल रही है, कुत्ते का पिल्ला भगवान का नाम ले रहा है। धीरे धीरे उसके पीछे बहुत जनता इकट्ठा होती है, वो सारे मार्केट से, सारे हाट से सब जगह गुजरते हुए और लोगों को इकट्ठा करते हुए नदी किनारे पहुंचे, तब तक तो उसके साथ में हजारों लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और अचानक सबके सामने नदी किनारे ये बालक जो कुत्ते का पिल्ला है वो बेहोश होकर वहां मर जाता है, भगवान के नाम को पुकारते पुकारते वही ढेर हो जाता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान ने कहा है ना, क्या केवल मनुष्य के लिए कहा है क्या, नहीं केवल मनुष्य के अंदर जो अंत काले च मामेव मुझे याद करेगा वही मुझको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं, कोई भी जीव अगर अंत समय में उनको याद करेगा तो उनको प्राप्त हो जाएगा। सबकी आंखों के सामने जिस कुत्ते के पिल्ले को गौरांग महाप्रभु ने हाथ लगाया था, उसके साथ खेल किया था, लीला किया था, प्रेम से उसको घर पे लेके आए थे, केवल उनके स्पर्श से ऐसा चमत्कार हुआ कि उसने तो एक पहले पहले कुत्ते के शरीर में भी मनुष्य का जबान से वो भगवान को पुकारा, सबको मेस्पराइज कर दिया, नदी किनारे शरीर छोड़ दिया, उस शरीर को उठाने के लिए आकाश से विमान आया वैकुंठ से, उसके अंदर जो दूत थे विष्णु के उन्होंने उस शरीर को लेकर जैसे रथ में रखा अपने विमान में, वो शरीर का रूपांतर हो गया वैकुंठ के शरीर में, वो शरीर प्राप्त हुआ उस कुत्ते के पिल्ले को, मतलब उस जीव को जो कुत्ते के शरीर में था, पिल्ले के शरीर में, उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया वैकुंठ का। और सबकी आंखों के सामने वो विमान जो है उन सेवकों के साथ में उस जीव को भगवान के धाम में ले गया। ऐसे लीला किसी भी अवतार में नहीं हुई है आज तक, किसी भी अवतार में नहीं, तत्क्षण कृपा। हाँ, ऐसे नहीं कि एक जीवन गया उसके बाद में धीरे धीरे मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, फिर धीरे धीरे भजन किया, फिर धीरे धीरे पाप का नाश हो गया, धीरे धीरे भक्ति का उदय हुआ, फिर प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गई भाव भक्ति के बाद में, फिर चला गया, नहीं ये सब ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, नो वेटिंग पीरियड सर, उधर वेटिंग पीरियड है ही नहीं। महाप्रभु के लीला में सब कृपा अनंत मात्रा में तत्क्षण होती है, लेने वाला चाहिए खाली, बस लेने वाला होगा तो अनंत मात्रा की कृपा जो है तत्क्षण हम सब पर भी हो सकती है। उसके लिए तो आए हैं वो, उनके पास तो ज्यादा समय नहीं है, डोंट थिंक ही हैज इनफ टाइम, उनके पास भी बहुत कम समय है, वो कम समय में सबसे अनंत मात्रा की कृपा जो है हम सबको देना चाहते हैं। सिद्ध कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं इन लीलाओं के माध्यम से कि मैं इसी के लिए आया हूँ और अभी भी हूँ आपके बीच में। आप हरिनाम संकीर्तन करो। नरोत्तम दास ठाकुर ने गौरांग महाप्रभु के जाने के पश्चात गौर पूर्णिमा का उत्सव आयोजन किया था। हाँ, बड़ा उद्भव अद्भुत उत्सव था वो खितुरी ग्राम के अंदर, वो बांग्लादेश में है वो खितुरी ग्राम। चैतन्य महाप्रभु के लीला समाप्त करने के कई साल बाद में उन्होंने सबसे पहले गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया था। उस गौर पूर्णिमा के उत्सव ने नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ऐसा कीर्तन किया था कि उस कीर्तन में नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु अवतरित हुए थे, केवल कीर्तन के समय में फिर अदृश्य हो गए थे। इतनी शक्ति है हरिनाम संकीर्तन में। हाँ, चैतन्य लोक से गौलोक धाम से गौरांग महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु को खींच लाया उन्होंने अपने कीर्तन में, इतना भाव प्रकट किया उसके अंदर। ये सब मुमकिन है हा? ये आप लोगों के, हम लोग के कलयुग के अंदर ही सब लीला हुआ है। ये सब समझना कि मैं किसी और कलयुग की बात कर रहा हूँ, तो बड़ा दिव्य था और तब पता नहीं कौन कौन लोग थे उसके अंदर। अरे हम सब लोग हैं उसके अंदर भाग्यवान लोग जो उसी कलयुग में जन्म लेकर बैठे हुए हैं और इसी कलयुग के केवल 524 साल पहले ठाकुर महाप्रभु जी यहाँ पर अवतरित हुए थे। ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहे हम लोग, केवल 5000 साल पहले कृष्ण आए थे और केवल 524 साल पहले आए थे वो, अभी अभी आए थे। और ये मौका गवा लिया ना आपने तो 86 अरब साल आपको वेट करना पड़ेगा। अभी पता नहीं कितने घोर कलयुगों से गुजरेंगे हम लोग, कितना कष्ट पाएंगे और कितना तकलीफ होगी हमको। इसलिए डोंट वेस्ट टाइम, समय बेकार मत गवाइए, यही जीवन है। और अभी जितनी अकल है हमारे पास बहुत छोटी है, लेकिन वो पर्याप्त है महाप्रभु की कृपा को ग्रहण करने के लिए। सब लोग पुकारिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कितना समय है? तो एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है इसमें ट्रेन में चिंतन करते आ रहा था मैं कि जब ही वसुदेव और देवकी को इतना कष्ट हुआ, जानते हैं ना, एक माता को इतना कष्ट कैसे हो सकता है, मतलब कैसे सहन कर सकती है। छह बालक आंखों के सामने पटके जा रहे हैं पत्थर पर, हाँ उनका लगदा बन रहा है उनकी आंखों के सामने, उनका जान चली जा रही है। इतने महीने गर्भ में रखने के बाद में, जन्म लेने के बाद में, इतने कष्ट में, कंस के कारागृह में जन्म हुआ जा रहा है, उनको पटका जा रहा है, उनका शरीर नष्ट होते जा रहा है। सातवां गर्भ जो है पता नहीं अद्भुत रीति से गायब हो गया और आठवें गर्भ के रूप में भगवान ने जन्म लिया। आप लोग बोलेंगे भगवान इतना कष्ट हुआ तुमको प्राप्त करने के लिए, अभी रहो हमारे साथ ना, सब दुखों का निवारण करो अभी। लेकिन भगवान हमारे ऐसे लीला पुरुषोत्तम है, एक ही क्षण कुछ क्षण रहे वहां पर, थोड़ा बहुत वार्तालाप किया प्रेम का, कहा मैं अभी जा रहा हूं, ले जाओ मुझे अब जमुना पार ले जाओ और यशोदा के घर में छोड़ के आओ, यही मेरी इच्छा है। वैसे हमारे यहाँ के भक्त लोग जो है वैसे ही इतने दूर 60 घंटा सफर किया उन्होंने अप एंड डाउन, वृंदावन में दर्शन हुआ उनको सांवले कृष्ण का और गोरी राधा रानी का, साथ में भी चले आए, लेकिन आते आने के बाद में कहा कि अभी नहीं थोड़ा रुको, जैसे वो कह रहे हैं ना अभी हमको छोड़ के आओ उधर कुछ समय के लिए। बेचारे गए छोड़ के आए, क्या करें, भगवान के भक्त थे। हम बोले अरे इतना हमने इतने मेल लिखे, इतना घंटा सफर किया, अरे खाना भी नहीं खाया, नींद भी नहीं मिली हमको, पता नहीं कब खाया और कब सोए और कब कैसे आए, अभी तो होश में ही नहीं हम लोग, अभी आज जरा आंख खुल रही है हमारी, कहां पर है, और आंख खुलने पर क्या खबर मिल रही है कि नहीं आने वाले वो आज, केवल वहां दर्शन देंगे यहाँ पर नहीं आएंगे, कुछ टाइम लगेगा उनको। ये वैसी स्थिति है जैसे वसुदेव को भगवान ने कहा कि अभी तुरंत मुझे छोड़ के आओ। 10 साल रहे वो वृंदावन में और वहां लीला किया उन्होंने, 10 साल के बाद फिर लौट के आए, बड़ा होकर आए, और उसके बाद में 100 साल रहे उनके साथ में। हमको आशा किसमें है, वो 100 साल में हमारी आशा है। 10 साल में गए गोकुल में कोई बात नहीं, उनकी इच्छा है, उनको आनंद देने का दे दिया, उसके बाद में आएंगे और 100 साल हमारे पास रहेंगे। हाँ, मतलब थोड़े समय के लिए दूर रहेंगे, बहुत समय के लिए हमारे पास रहेंगे, इसी आशा को हम रखते हैं। भगवान की लीला में ना कोई निराशा नहीं है कभी भी, याद रखना इस बात का, निराशा नहीं है कभी भी। हर समय आशा है भगवान की लीला में। भगवान लीला ही भक्तों के हाथ में ऐसे करते हैं, कुछ कसौटी जरूर करते हैं, कुछ टेस्ट जरूर लेते हैं, कुछ जरूर तड़पाते हैं, लेकिन निराश नहीं करते कभी। उनकी लीला में आशा ही आशा है, आनंद ही आनंद है। तो उसी आशा पर भरोसा करते हुए हम लोग तैयारी करेंगे अपने आप की, तो भगवान को स्वागत करेंगे। भले कुछ 10 दिन 10 महीना रुकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आएंगे, अपने साथ रहेंगे, अपनी सेवा लेंगे। श्री कृष्ण भगवान की, गौरांग महाप्रभु की, निथाई गौर प्रेमानंद। वहां से कुछ अलग सिग्नल आ रहे हैं, 8:40 हो गए, 5 मिनट्स मोर घंटी बजाने के लिए। हरे कृष्ण, हाय हाय। नहीं, लेकिन हम हाय हाय नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको जितना समय मिलता है उतना अच्छा ही है भगवान के बारे में बोलने के लिए। गौरांग महाप्रभु की लीला सुनने का पता है फल क्या है? बताना भूल गया मैं आपको, वो सांप की कथा बताया ना आपको मैंने, उसका क्या मतलब फलश्रुति क्या है उसकी, कि वो कथा जो बड़े प्रेम से सुनता है वो इस जीवन में जन्म मृत्यु के सांप के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। और जो वो दो चोर जो उनको उठाकर ले गए थे चैतन्य महाप्रभु को, गौरांग गौर हरि को उठाकर ले गए थे, वो कथा जो सुनेगा वो भक्ति में एकदम दृढ़ बन जाएगा। इसका फलश्रुति कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं। ऐसे गौरांग महाप्रभु लीला जो है वो अद्भुत अवतार लीला है, उसको सुनने से अभी घंटी अगर 10 मिनट लेट बजती है तो अच्छा ही है हमारे लिए, अपना कल्याण ही है उसके अंदर। अभी कौन सी लीला बताए, किसी को कुछ चॉइस है, प्रेफरेंस है? केशव काश्मीरी, जय हो। अरे हमारे निमाई जो है ना, वो गंगादास पंडित के पाठशाला में गए और कुछ ही दिन में उन्होंने सब कुछ सीख लिया। ऐसा विद्यार्थी उनके पाठशाला में कोई हुआ नहीं आज तक, तो बहुत कम समय में इतना विद्वान पंडित बन गया कि सभी लोगों को परास्त कर दिया। केवल आदर के लिए उन्होंने गुरु से वाद विवाद नहीं किया, लेकिन जितने भी पंडित थे सबको परास्त कर दिया उन्होंने वाद विवाद में। लेकिन उस समय एक बड़ा पंडित बाहर गांव से आया, उसका नाम था केशव काश्मीरी, और इतना वो महान पंडित था कि सरस्वती की कृपा को सिद्ध किया था उसने, अपने भजन पूजन से सरस्वती को इतना प्रसन्न किया था। देवी सरस्वती ने वादा किया था कि तुम्हारे जबान पर बैठकर मैं से बात करती रहूंगी, तो जो बोलोगे मैं तुम्हारे जबान से बोलूंगी, इतना वरदान दिया था उसको। ऐसा कोई पंडित नहीं हुआ आज तक, तो घमंड था उसको अपने, क्योंकि जबान से सरस्वती बोलेगी तो किसी को डर है कुछ का, तो गर्व हो गया उसको। और वो गांव गांव घूमने लगा, सब जगह अपना विजय पत्र लेकर कहने लगा कि बैठो हमारे साथ विवाद करो, नहीं तो साइन करो इसके ऊपर कि हम हार गए। उसने सुना था कि नवद्वीप में कोई निमाई पंडित है, तो पहले निमाई था अभी पंडित बन गया है, पूरे नवद्वीप ज्ञान का पीठ बन गया है, सब लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए नवद्वीप आ रहे हैं, ऐसा उसकी ख्याति सुनता है, इसलिए वो आता है वहां पर। पहले दिन जो है उसको पता नहीं कौन निमाई पंडित है, वो निमाई नदी में खेल रहा है, वहां पर केशव कश्मीर भी आते हैं, उनकी आंखों देखी हो जाती है लेकिन पहचानते नहीं है। अगले दिन जब देखते हैं, कह रहे यही तो बालक था, कल मैंने देखा था उसको, तो नदी किनारे जो इसके ये निमाई पंडित थोड़ा बालक ही है, लेकिन पंडित होने की वजह से कुछ विद्यार्थी भी उसके अपने हैं, खुद के वो खुद विद्यार्थी है और उनके भी कुछ विद्यार्थी हैं छोटे छोटे बालक, वो सब नदी किनारे बैठकर उनसे पढ़ते थे, पढ़ रहे थे बैठकर, सिखा रहे थे उनको। वहां पर केशव कश्मीरी आते हैं और कहते हैं कि हम वाद विवाद करेंगे अभी बैठकर। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप जरा गंगा जी के ऊपर कुछ बोल देना अपना। तो धड़ाधड़ नदी की प्रवाह की तरह, यू नो बरसात के धारा की तरह, ऐसे धारा प्रवाहित 100 श्लोक बना देते हैं ऑन द स्पॉट गंगा जी के ऊपर। 100 श्लोक चार चार लाइन वाले छंद में सिद्ध किए, बद्ध किए हुए, धड़ाधड़ 100 श्लोक बोलते हैं गंगा जी की स्तुति में। सब विद्यार्थी जो निमाई पंडित के सामने तो अचंभित हो जाते हैं, अरे बाप रे, इतना भयंकर विद्वत्ता प्रकांड पंडित थे, हमने कभी सुना ही था। और वो 100 श्लोक बोलने के बाद में उसका गर्व अधिक बढ़ता है, देखो मैंने ऐसे धारा प्रवाहित श्लोक बोल दिए, अभी क्या बोलेगा बालक मेरे सामने। तो उसको आश्चर्य करने के लिए पूरा निमाई पंडित कहते हैं कि तुम्हारे 100 श्लोक के अंदर के 64वां श्लोक के अंदर ये 3 दोष है, केवल एक का बता रहा हूँ, बाकी सबके नहीं बता रहा हूँ, एक ही श्लोक बता रहा हूँ मैं अपने, बहुत दोष उसके अंदर थे। व्हाट, मेरे श्लोक के अंदर, छंद रचना के अंदर दोष? चलो कोई बात नहीं, किसमें दोष है? बोला एक का ही बताऊंगा, सबका नहीं बताऊंगा। 64वें श्लोक के अंदर आपने बताया भवानी भरतुर, यानी भवानी उस व्यक्ति, भवानी वो व्यक्ति का नाम है जो शिवजी की पत्नी है, और आपने कहा है भवानी भरतुर, यानी कि शिवजी की पत्नी का पति शिवजी की पत्नी का पति, मतलब इसका अर्थ हो सकता है कि शिवजी की पत्नी की और कोई पति है दूसरा, ऐसे आपने रचना में कोई गड़बड़ कर दिया है, मतलब विश्वरूप व्यास के पत्नी का पति मैं भी हो सकता हूं और कोई भी हो सकता है, पॉसिबल ना? तो ये दोष है आपके रचना के अंदर। तो उसको समझ आते हैं, हाँ यार कुछ गड़बड़ है मेरे से, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि वो बालक ना ऐसे मुंह में ऐसे ऐसे हंसते सब बालक, तो नमाय पंडित कहते हंसना नहीं, और देखते हैं कि इनकी थोड़ी मति भी भ्रष्ट हो रही है, क्योंकि इतने जोरदार श्लोक बोले और उसमें से दोष निकाले तो थोड़ा सा वो बिविल्डर हो गए, भ्रमित हो गए। तो निमाय पंडित कहते हैं कोई बात नहीं, अगला वाद विवाद पार्ट टू हम कल करेंगे, अभी आप विश्राम कीजिए, थोड़ा सा आराम कीजिए, थोड़ा सा आराम करके मेंदू को थोड़ा फ्रेश करके कल आ जाइए। तो बेचारे बहुत भ्रमित होकर चले जाते हैं, कहते हैं कि मेरे दिमाग से ऐसा दोषपूर्ण श्लोक निकले कैसे, बड़े उदास हो जाते हैं, बड़ा उनका क्या कहते हैं अहंकार चोर हो जाता है। एक बालक के सामने मैं 100 श्लोक इतने धड़ाधड़ बोल दिए और एक श्लोक में से केवल उसने बोला कि एक ही श्लोक का बोलूंगा करके 3 दोष निकाले उसमें से, कैसे हो सकता है ऐसे? घर जाकर देवी के सामने गड़गड़ाते हैं, सरस्वती देवी ऐसे क्या हुआ अपराध आज? तो देवी उसको दर्शन देती है, कहती है मूर्ख बालक तुम जानते नहीं तुम किससे वाद विवाद कर रहे हो, वो मेरे आराध्य देवत है, भगवान है वो मेरे, तुम चाहे मेरे प्रिय शिष्य होंगे और मैंने तुमको वरदान भी दिया है कि तुम्हारे जबान पर बैठ के मैं बात करूंगी, लेकिन मेरे भगवान के सामने नहीं, वो मेरे आराध्य भगवान है, जाओ उनके शरण में चले जाओ, अपने पांडित्य का गर्व छोड़ दो, जिनसे मैंने कृपा प्राप्त की है और मैंने आपको कृपा दी है वो मेरे आराध्य भगवान है, वो उनको पहचानो, अपने अहंकार के घमंड में तुम दृष्टि को भूल चुके हो, दृष्टि को खो चुके हो, उनको पहचान नहीं रहे हो, जाओ उनके शरण में ग्रहण करो, शरण ग्रहण करो। तो अगले दिन प्रकांड पंडित केशव कश्मीरी, जिन्होंने अनंत पंडितों को परास्त कर दिया था, वो भाग भाग के आते हैं और जोर से छलांग लगाते हैं उनके चरणों के अंदर, एकदम दंडवत हस्तांतरण प्रणाम कर देते हैं, माफ करना निमाई मैंने आपको पहचाना नहीं। तब भी वो उनको शरण देते हैं और अपने आश्रय में ग्रहण करते हैं। इस तरह से केशव कश्मीरी जैसे प्रकांड पंडित को निमाई बालक ने परास्त कर दिया, ये उनकी विद्वत्ता का जो ऐश्वर्य है उसका एक प्रकटीकरण है, ये भगवान के कई ऐश्वर्य हैं, उसमें विद्वत्ता एक ऐश्वर्य है, वो जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर दिखाया। हाँ बोलता दो भाई, हाँ कौन सी कथा है? नहीं याद आ रहा मुझे, बचपन में बहुत नटखट थे महाप्रभु चैतन्य, हाँ जब नदी में खेलते थे तो बहुत सारे साधु लोग जो है वो ऐसे अपने आधे अपने आप को आधा पनीर पानी में डुबा कर मंत्र जप किया करते थे, हम लोग करते ना गायत्री नदी के अंदर तो ये बालक निमाई जो क्या करते थे, नदी के अंदर जाकर, अंडर वाटर जाकर उनके पैर उठाकर उनको उल्टा करते थे, कभी किसी को पैर पकड़ के उल्टा करते थे, वो सब लोग ध्यान से मग्न होकर गायत्री कर रहे हैं, अचानक नीचे से कोई पैर उठाकर उल्टा कर देगा तो कैसे होगा, फिर कभी ऐसे ध्यान से कोई जब कर रहा है आंख बंद करके तो नीचे जाकर मुंह में पानी लेकर उनके मुंह के सामने प्रकट होकर उसके मुंह में अपने मुंह से पिचकारी मारते, कभी माता जी का घाट है स्नान करने का, प्रभु जी का घाट है तो वहां पर साधु लोग स्नान कर रहे हैं, अपना कपड़ा निकाल के रखा हुआ है, तो ये क्या करते थे, प्रभु जीओं का धोती कुर्ता माता जीओं के पास रखते थे, माता जीओं का साड़ी और चोली प्रभु जी के पास रखते थे, तो जब वो स्नान करके बाहर आते थे तो देखते थे कि चोली और साड़ी यहाँ पर पड़ी है, तो माता जी बाहर आते थे तो धोती कुर्ता देखते थे ऐसे बहुत चटपटी दिला भगवान निमाई बचपन में क्या करते थे, और उनके रोज कंप्लेंट जो है सची माता के पास आती थी हमेशा। सची माता कहती थी कभी तो रंगे हाथ पकड़ के ले आओ ना हमारे बालक को, हमेशा कंप्लेंट करते हो। ये मैं मानती नहीं हूँ कि मेरा बालक इतना नटखट है, नदी में जाकर ये सब करके आता था और घर में भाग के पहले आता था। मैया ये ऐसे क्यों बोल रही है, मैं कब से घर पे आया हूँ, तुम्हारा रोटी वोटी खाके में बैठा हूँ, ये हमेशा जानबूझ के मेरे खिलाफ कंप्लेंट करते रहते हैं और मेरे पता नहीं इनके मेरे साथ क्या दुश्मनी है, जब चाहे मेरे खिलाफ कंप्लेंट करते रहते हैं। मैं इतना अच्छा बालक हूँ आपका, वो भी सोचते हैं कितना अच्छा मेरा बालक है, कुछ तो करता नहीं है फिर भी ये कंप्लेंट करते रहते। सेम नंद महाराज सुबह ऐसे ही रहा, सब जगह माखन चुराना और गोपियां कंप्लेंट करती थी, उनके पहले घर पहुंच जाना और माखन खा के सो जाना, फिर गोपियां पहुंचती थी और नींद से उठते थे मैया क्या शोर मच रहा है, ये गोपियां देखो कह रहे हैं कि माखन चोरी करके आए हो, मैया मैं तो कब से तुम्हारे घर पे आके कब से रोटी खाकर मतलब मक्खन खाकर सो गया हूँ, मैं कहा इनके घर में रोटी मक्खन खाऊंगा, इतना बढ़िया मक्खन तुम बनाती हो, मैं जाऊंगा इनके घर में चुराने करने के। तो गोपियां कहती थी कि नहीं अभी अभी तो घर पे हमारे होके आया, पता नहीं कैसे पहुंच गया जल्दी हमारे पास। फिर वो कहती कभी कभी रंगिया तो पकड़ आया करो, उसी तरह से उसी प्रकार की जो गोकुल में हुआ करती थी, अंध गांव में हुआ करती थी, तो यहाँ पर भी हो रही है। इस तरह से नवद्वीप वासियों को गौर हरि ने बहुत आनंद दिया, सबका हृदय प्रेम भक्ति से भर दिया और साथ साथ कलयुग के रूप से हरि नाम संकीर्तन भी भर दिया। पूरा गौर हरि के हरि कीर्तन से नवद्वीप गूंज उठा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कथा को विराम देते हैं, गौरांग महाप्रभु की जय।